जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जन रंजन, यशोदानन्दन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तेरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, निदाय गौर हरिबोल 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 हरिबोल, निदाय गौर प्रेमानंदे श्री हरि नाम संकीर्तनम की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम से पाठ स्कंध 4 अध्याय संख्या 28। अध्याय का शीर्षक है अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति। श्लोक संख्या 11। भयनाम्नो ग्रजो भ्राता प्रज्वर प्रत्युपस्थितः ददाहतां पुरीं कृत्स्नां भ्रातुः प्रियचिकीर्षया। भयनाम्नो ग्रजो भ्राता प्रज्वर प्रत्युपस्थितः ददाहतां पुरीं कृत्स्नां भ्रातुः प्रियचिकीर्षया। भयनाम्नो ग्रजो भ्राता प्रज्वारः प्रत्युपस्थितः ददाहतां पुरीं कृत्स्नां भ्रातुः प्रियचिकीर्षया। शब्दार्थ भयनाम्नः, भयनामक अग्रजः बड़ा भाई, भ्राता भाई, प्रज्वारः प्रज्वार ने, प्रत्युपस्थितः वहां उपस्थित होकर, ददाह आग लगा दी, ताम उस पुरीम पुरी में, कृत्स्नाम पूरी तरह से, भ्रातुः अपने भाई को, प्रियचिकीर्षया प्रसन्न करने के लिए। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभयचरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। ऐसी दशा में यवनराज के बड़े भाई प्रज्वार ने अपने छोटे भाई भय को प्रसन्न करने के लिए नगरी में आग लगा दी। तात्पर्य वैदिक प्रथा के अनुसार शव का ही अग्निदाह किया जाता है, किंतु मृत्यु के पूर्व भी एक दूसरी अग्नि या ज्वर होता है जिसे प्रज्वार या विष्णु ज्वार कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान इसकी पुष्टि करता है कि यदि मनुष्य का ताप 107 डिग्री से अधिक बढ़ जाता है तो मनुष्य तुरंत मर जाता है। यह प्रज्वार जीव को जीवन की अंतिम अवस्था में दहकती अग्नि में छोड़ देता है। श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका आज के शनिवार प्रातःकालीन भागवत सप्ताह भागवत कथा या भागवतम क्लास में कक्षा में स्वागत है। तो प्रारंभ में मैं उपस्थित सभी वैष्णवों के चरणों में आशीर्वाद की दंडवत प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद की याचना करता हूँ, खास करके वरिष्ठ भक्त श्री गुरुचरण प्रभु आदि, तो कि इस भागवत के विषय वस्तु पर कुछ शब्द कह पाऊँ। तो ये प्रसंग चल रहा है स्कंद चौथा अध्याय संख्या 28 से। बहुत दिनों से हम जो है पुरंजन उपाख्यान इस प्रसंग को पढ़ रहे हैं और खास करके ये जो 28वां अध्याय है इसके अंतर्गत जरा और मृत्यु की सार्वत्रिकता, यूनिवर्सैलिटी ऑफ ओल्ड एज एंड डेथ, ये जो विषय है उसका उहापोह हुआ है। जीवस्य स्थूल शरीर त्याग प्रकारम आह, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते जीव किस प्रकार से स्थूल शरीर जो है उसको परित्याग कर देता है, क्या क्या होता है, ये चीजें जो है 24वें श्लोक तक खास करके इस अध्याय में बताई गई है। तो एक्चुअली ये इस जगत का सत्य है, एकदम खुला सत्य है कि हर एक व्यक्ति को वार्धक्य और फिर उसके तत्पश्चात मृत्यु जो है उसको प्राप्त होना ही पड़ता है। ये पुरंजन जो है हम सब की कहानी है, हर एक व्यक्ति की कहानी है और खास करके यहाँ पे जैसे दिख रहा है पुरंजन के भोग करने के कालावधि के पश्चात अभी यवनराज प्रजवर एवं कालकन्या पूरा उत्पात मचा रहा है, पूरी पूरी तरह से पुरंजन की नगरी में आग लगा दे रहे हैं, आक्रमण करके पूरा उत्पात जो है मचा रहे हैं। यवनराज जो है उनको भय या मृत्यु के साथ तुलना की गई है और उनके अग्रज है प्रजवर, तो बड़े भाई है, बड़े भाई के बाद छोटा भाई आता है, तो इसलिए प्रजवर जो है वो एक विशेष प्रकार का ज्वार, जैसे प्रभुपाद भी समझा रहे विष्णु ज्वार भी कहते हैं, ऐसा ताप है वो। प्रभुपाद जी तो 107 डिग्री बता भी रहे कि कैसे आजकल के आधुनिक विज्ञान के द्वारा, तो इसके पश्चात जो है मृत्यु आएगी, तो इसलिए अग्रज के साथ तुलना की गई है प्रज्वार की, पहले प्रज्वार और फिर जो है देखते हैं कि यवनराज जो है पूरी तरह से भय और साथ ही साथ आचार्य कहते विशेष रूप से मृत्यु सबसे बड़ा भय, इसके साथ यवनराज की तुलना की गई है, तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा व्यक्ति जो है वो। और कालकन्या जो है कालस्य दुहिता, काल की पुत्री मानी गई है, काला जरा जायते इसलिए इति कालस्य दुहिता कहा है, काल जैसा चलता है काल से जरा उत्पन्न हो जाती है, काल काल में जरा उत्पन्न हो जाती है, इसलिए काल की पुत्री कहा है उसको कालस्य दुहिता। इस प्रकार से तो ये तीनों मिलके पूरा इस देह जो है या पुरंजन की नगरी जो है इसको पूरा, तो पूरी तरह से उसका विघटन कर रहे हैं, उसको पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग देखते हैं कि पुरंजन की जो आसक्ति है यहाँ पे दिखाई पड़ती है, किस प्रकार से पुरंजन जो है अपनी पत्नी और अपने बच्चे इनको याद कर रहे और उनके बारे में ज्यादा विचार कर रहे, हालांकि उनका जो नगरी है मतलब ये जो देह है पूरी तरह से खत्म हो रहा है, लेकिन तो भी उनको अपनी जो आसक्ति है उस आसक्ति की ही यहाँ पे आसक्ति का ही स्मरण हो रहा है। तो ये इस जगत में भी दिखाई पड़ता है, हम लोग देखते हैं पुराण में जो काल है समय, तो पुराणों में उसकी तुलना एक व्यक्ति से की गई है जो आपके साथ हर एक व्यक्ति के साथ द्युत क्रीड़ा करता है, तो द्युत क्रीड़ा करते हैं तो जैसे आपने सुना भी होगा कैसीनोज में वगैरह भी पहले व्यक्ति को जीतने देते हैं, थोड़ा जीतता है व्यक्ति जो है, एक्चुअली जुआ खेलने में वगैरह कोई जीत जाता है तो वो सबसे बड़ी खतरनाक चीज है, क्योंकि अभी जीतेगा तो उसको लगता है अभी तो फिर मैं बहुत आगे खेलना चाहिए और भी पैसे जो है वो दांव पे लगाएगा। तो उसी प्रकार से काल जो है वो द्युत क्रीड़ा खेल रहा है जीव के साथ में और जीव को जीतने देता है। फांसे जब डाले जाते हैं तो जीव को लगता है अरे मैं जीत रहा हूं एकदम। तो उसी प्रकार से जीवन के संघर्ष में हमें लगता है कि हाँ मैं सफल हो रहा हूं, एक के बाद एक सफलताएं आ रही है। कुछ असफलता भी आती है तो भी प्राइमरी प्रधानता से लगता है सफलताएं आ रही है, सफलताएं आ रही। तो काल जो है बड़ी आंखों से केवल देख रहा है उसको, अच्छा ठीक है जीत रहे हो, ठीक है जीतो जीतो। लेकिन वहां पे कहा है कि अंतिम फांसा जो है काल के पास है, वो जैसे ही फेंक देता है वो गेम ओवर, बस उसके बाद कुछ खेलना नहीं है। वो पूरे पूरे आपके पत्ते जो भी कुछ है वो खत्म हो रहा है वहां पे। ऐसे जैसे कोई मुष्टि योद्धा है तो नए योद्धा को थोड़ा मारने देता है, कभी मार लेता है वो भी कहां पे, शायद दिखा भी देगा कि थोड़ा लग गया करके, लेकिन फिर अभी उसको खत्म करनी है गेम, तो एक लगा देता है पूरा, एक मुक्का लगा देता है, फिनिश्ड, गेम ओवर, नॉकआउट, वो पूरा रिंग से बाहर। इस प्रकार से तो वैसे ही काल की तुलना की गई है। अंतिम जो है मृत्यु, उसके साथ काल जो है जीव को रिंग के बाहर कर देता है, फिनिश्ड, उसके साथ अभी और कुछ जो क्रीड़ा है वो खेलनी नहीं है। तब तक भले ही व्यक्ति लगे सफल असफल वगैरह, लेकिन अंतिम जो है वो असफलता है काल के साथ खेलने में, इस क्रीड़ा के अंतर्गत। तो भी अब लोग देखते हैं कि हर कोई इस जीवन में अपने अपने लक्ष्य में लगे है कि नहीं। इंद्रिय सुख हो या फिर मानसिक सुख हो या फिर बौद्धिक सुख हो, हर कोई जो है अपने 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 कार्यों में लगा हुआ है। ये बड़ा आश्चर्य, युधिष्ठिर महाराज भी कहते हैं। श्रीपद आदि शंकराचार्य एक बार वाराणसी में सुबह सुबह भ्रमण कर रहे थे, वाराणसी का तीर्थ का तीर्थाटन कर रहे थे, और सुबह सुबह उन्होंने देखा कि एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति, बड़ा वृद्ध है, और वो जो है पाणिनि के धातु पाठ में से धातुओं का पठन कर रहा है। तो पाणिनि जो है अष्टाध्यायी उन्होंने लिखा है व्याकरण का ग्रंथ, उसमें कुछ धातुओं की सूची दी है 2200 धातुओं की, और उसमें सारे धातु का अर्थ क्या है बताया है। तो जैसे एक एक धातु का अर्थ बताते हैं, इस धातु का अर्थ क्या है, उस धातु का अर्थ क्या है, ऐसे। तो जैसे पच धातु है, पच मतलब पकाना, तो कुक वो वाले अर्थ में पकाना, ठीक है। तो उस पच धातु के सामने उन्होंने कुछ वस्त्र भी जोड़ दिए है, आप कह सकते हो शब्दों के रूप में, डू जोड़ दिया है और अंत में श जोड़ दिया है, तो बन जाता है डुपचश, और इसका अर्थ देते हैं पाणिनि पाके, पाके मीन्स टू कुक। तो उसी प्रकार से कृ धातु है, कृ, तो कृ धातु का अर्थ होता है टू डू, करना, तो उसके आगे भी डू है और न्या है अंत में, जो कि उसके वस्त्र जैसे है, धातुओं को वस्त्र में बांध दिया है। तो डुकृण करणे ऐसे बोल रहा था वो, याद करते हो ऐसे, डुपचश पाके, डुकृण करणे, डुकृण करणे। तो ये भी सुबह 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 के काल पे डुकृण करणे याद कर रहा था, डुकृण करणे, डुकृण करणे, डुकृण करणे, डुकृण करणे, ऐसे। शंकराचार्य को देख के रहा नहीं गया, सुबह सुबह की कालावधि में भगवान का स्मरण करने की बजाय ये डुकृण करणे कर रहा है। तो तुरंत शंकराचार्य के हृदय से उत्स्फूर्त से निकला एकदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्षति डुकृण करणे। तो उन्होंने तुरंत बोल दिया भज गोविंदम, अरे ये क्या कर रहे तुम, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, अरे मूर्ख, गोविंद को भजो। संप्राप्ते सन्निहिते काले, जब तुम्हारा काल नजदीक आएगा, तुम्हारा मृत्यु ऑलरेडी नजदीक आ गया है, मैं देख रहा हूं ऐसे, नहीं नहीं रक्षति, रक्षण नहीं करेगा क्या, डुकृण करने, ये जो डुकृण करने बोल रहे हो तुम, धातु के अर्थ जो है याद कर रहे हो, वो तुम्हें बिल्कुल रक्षा नहीं करेगा। इस प्रकार से ऐसे उत्स्फूर्तता से एकदम निकला वो, एकदम पूरे उसके प्रति अनुकंपा से ऐसे, और ऐसा वो अनुकंपा था शंकराचार्य का, ये श्लोक बोलने के बाद धड़ 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 करके 11 श्लोक बोल दिए उन्होंने एकदम, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसे। तो 11 श्लोक और ये पहला, ऐसे 12 श्लोक पूरे शंकराचार्य ने बोल दिए उसको उपदेश करते हुए। तो शंकराचार्य के साथ 14 शिष्य थे, तो वो गुरु का ये प्रताप देख के उनको भी रहा नहीं गया, तो तुरंत 14 शिष्यों ने हरेक ने एक 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 श्लोक रच दिया उधर ही शंकराचार्य के साथ, शंकराचार्य का जो स्तोत्र है उसमें सप्लीमेंट करके। तो 14 जो शिष्य थे हरेक ने एक एक, सुबोध थे, हस्तामलक थे, सुरेश्वर थे, ऐसे बहुत सारे शिष्य थे, हरेक ने एक 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 श्लोक दिया, 14 धड़ 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 धड़, और 14 श्लोक जो है लिखे गए।
और फिर शंकराचार्य शिष्यों के प्रति वह देख के बड़े प्रसन्न हुए, तो फिनिशिंग टच करके और 5 शंकराचार्य ने लिख दिए। तो 12 + 14 = 26 + 5 = 31, ऐसे 31 श्लोकों का मोह मुद्गर स्तोत्र बन गया। वो बड़ा प्रसिद्ध है, मोह मुद्गर स्तोत्र। ऐसे मोह के ऊपर, इस जगत के मोह के ऊपर हथौड़ा है वो, मुद्गर। मुद्गर कहते हैं हथौड़े को। इस प्रकार से तो ये जो इतना सुंदर इस प्रकार से उन्होंने स्तोत्र रखा, तो फिर वृद्ध समझ गया, नहीं नहीं रक्षति डोक्रेण करने, एकदम वो इफेक्ट जो है पूरा सीधे सीधे हुआ ऐसे। तो इसी मोहमुद्गर स्तोत्र में बड़े सुंदर श्लोक है, खास करके वैराग्य जो है उसकी प्रधानता बताते हुए। तो अंगम गलितम पलितम मुंडम, जो आपने सुना होगा वो प्रसिद्ध श्लोक हस्तामलक ने लिखा, वैसे सुबोध करके अन्य एक शिष्य थे, उन्होंने लिखा एक बड़ा शुद्ध, अग्रे वन्ने पृष्ठे भानो रात्रौ चूबुक समर्पित जानो करतल भिक्षस्तरुतालवास तदपि न मुंचति आशा पाश भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तो शंकराचार्य ने देखा ये तो व्यक्ति बौद्धिक अपने भोग में कार्य में अटका हुआ है, कभी कोई इंद्रिय सुखों में अटका हुआ है, कोई बौद्धिक सुखों में, कोई अहंकार के सुख में अटका हुआ है। तो यहां तक कि तथाकथित वैराग्य का मार्ग करने वाला व्यक्ति भी उसका भी आशा पास छूटता नहीं है जल्दी। अग्रे वन्नी, वो बता रहे हैं जैसे वाराणसी में बहुत सारे वैराग्य के मार्ग का अनुगमन करने वाले कुछ दिखते हैं, अग्रे वन्नी आगे आग जला देते हैं एकदम, पृष्ठे भानु और ऊपर जो है सूरज या पीछे जो है सूरज रहता है, तो ऐसा दिन में तपस्या करते रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं। रात्रौ चूबुक समर्पित जानो, और रात्रि में भी इतनी ठंड होती है वाराणसी आदि में भी, लेकिन तो भी कुछ वस्त्र या फिर नीचे कुछ डालते नहीं है, कुछ बिछाना बनाते नहीं है, चूबुक समर्पित जानो। चूबुक कहते हैं हनु को, इसको चिन्ह, और जानो कहते हैं घुटनों को। तो ऐसा सोता है वो एकदम ऐसा कर्ल्ड अप होके कि चूबुक जो है उसका, हनु जो है वो घुटने को लग जाता है, मतलब क्योंकि कुछ कुछ पहनता, कुछ ये बिछाना या फिर कुछ जो ओढ़ने के लिए चादर वादर नहीं लेता है, तो पूरी तपस्या कर रहा है दिन में, अग्रे वन्नी पृष्ठे भानु, और रात्रि में इस प्रकार से सो रहा है ऐसे। करतल भिक्षा, एकदम जो भी भिक्षा ले रहा है वो किस पे ले रहा है, करतल बस कर पात्री है, कर ही उसके पात्र है ऐसे। और तरुतल वास, और बस पेड़ के नीचे रह रहा है, तदपि न मुंचति आशा पाश, तो भी लेकिन आशा जो है कि इस जीवन में कुछ करना है, मैं भी कुछ विशेष हूं, मुझे भी कुछ मिल जाए, ये जो है जाता नहीं है। बड़ी बड़ी ये जो चीज है बड़ी विशेष है इस प्रकार से। तो हम लोग देखते हैं कि ये चीज इस जगत में दिखाई पड़ते हैं, अपने अपने चीजों में भले ही व्यक्ति संलग्न रहे लेकिन आशा पास छूटता नहीं है, और उसके पहले जो है ये काल कन्या यवनराज और ये प्रजवार आके धमक जाते हैं वहां पे, तो भी व्यक्ति की आशा जो है वो छूटी नहीं रहती है। लौकिक लौकिक अर्थ में एक कथा बताई जाती है, एक बार व्यक्ति ने सुना कि काल कन्या बड़ी खतरनाक है, काल कन्या जिसके भी ऊपर कृपा कर लेती है, जिससे भी दोस्ती बना लेती है, उसका काम खत्म। तो उसने सोचा इस काल कन्या से ही दोस्ती बना लेता हूं ऐसे। तो फिर उसने काल कन्या जो है उसने पता किया, और काल कन्या को जाके मिला और कहा कि आप मुझसे दोस्ती कीजिए। काल कन्या बोली क्या क्या दोस्ती क्या करनी है, तो बस दोस्ती में एक ही चीज निभानी है आपको, आप जब आएंगी उसके पहले मुझे कुछ न्यूज, कुछ मेल तो नहीं, कुछ पत्र चिट्ठी जो है वो भेज दीजिए। काल कन्या जो है उनको उन्होंने कहा कि आप मुझे चिट्ठी भेज दीजिए, ऐसे एकदम से मत आइए धड़ाम करके, एकदम चिट्ठी भेज दीजिए ऐसे। तो ठीक है, काल कन्या ने कहा मैं चिट्ठी भेज दूंगी। तो फिर ये व्यक्ति जो है अपना जीवन यापन करता रहा, पूरा परिवार ये वो सारा जो भी जीवन का सुख है ऐश्वर्य है भोगते रहा, और एकदम से फिर देखा जीवन के अंतिम काल में धड़ाम करके काल कन्या जो है वहां पे सारे सैनिकों के साथ उपस्थित हो गई। तो उसने कहा अरे मैंने तो आपको बोला था कि आपको मुझे बताना चाहिए, आप मुझे चिट्ठी लिख के ही आना करके, ये तो आपने आपकी मित्रता नहीं निभाई ऐसे। तो काल कन्या ने कहा एक एक नहीं चार चार चिट्ठी भेजी है तुमको, तुमने पढ़ी नहीं, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो चार चार चिट्ठी भेजी थी। उसने कहा कैसे चार चार चिट्ठी कैसे भेजी, हाँ मैंने भेजी थी चार चिट्ठी, सबसे पहली चिट्ठी मैंने भेज दी जब आपके बाल सफेद हो गए, उन्होंने कहा बाल जो है पूरे पूरे तरह सफेद हो गए। तो व्यक्ति का जरा में बाल सफेद हो जाता है तो वो सिग्नल है एक्चुअली कि अभी निश्चित काल कन्या जो है मृत्यु जो है जल्दी नजदीक आ रहा है। आजकल तो केमिकल खाने से बाल बड़े जल्दी है कि नहीं पक जाते हैं, मेरे भी केस में बाल थोड़े बड़े जल्दी सफेद हो गए। तो मैंने जाके डॉक्टर को पूछा तो बोला बड़ा केमिकल खा रहे हो आप कुछ तो इसलिए बाल बड़े जल्दी पक जाते। तो आजकल तो बड़ा जल्दी इंडिकेशन है कि नहीं। फिर उसके पश्चात कालकन्या ने कहा आपने उस पर ध्यान नहीं दिया इसलिए मैंने दूसरा जो है आपको पत्र या चिट्ठी लिखी, और वो क्या थी, आपकी दृष्टि कमजोर हो गई, दिख नहीं रहा था, छोटे आंख करके देख रहे हैं वगैरह ऐसे, या फिर चश्मा जो है वो लगाना पड़ रहा है तो दृष्टि कमजोर हो गई आपकी पूरी तरह से, तो भी आपने चिट्ठी पढ़ी नहीं, आपने तो भी देखा नहीं। तो तीसरा मैंने आपको चिट्ठी या पत्र लिखा, आपके सारे दांत बाहर कर दिए मुख से, दशन विहनम जातम तुंडम, वो भी श्लोक कहता है, सारे मुख से दांत वगैरह भी बाहर कर दिए, लेकिन तो भी आप वो क्या कहते हैं उसको आर्टिफिशियल टीथ उसको बिठा के अक्रोड़ अक्रोड़ खाने का भी प्रयास कर रहे हो ऐसे है कि नहीं, और क्या 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 अलग अलग दंत मंजन यूज करके लोग जो है सोचते हैं मेरे भी दांत बढ़िया है करके, ऐसे कोई दिखाना नहीं चाहता दांत जो है बाहर आ गए करके पूरा पूरा। और ये भी चिट्ठी आपने पढ़ी नहीं, तो अंतिम मैंने पूरे शरीर को वक्र कर दिया, जो शरीर है उसको पूरी तरह से वक्र टेढ़ा कर दिया इस प्रकार से, लेकिन तो भी आपने देखा नहीं। तो ऐसी चार चार चिट्ठियां भेजने के बाद भी अगर आप पढ़ते नहीं हो तो इसमें किसका दोष है, ऐसे करके कालकन्या ने जो है तुरंत उस व्यक्ति को अपने चपेट में ले लिया इस प्रकार से। एक संस्कृत भाषा में सुभाषित कहता है कि जब जरा आती है तो जरा या बुढ़ापा आता है तो व्यक्ति में यम यमराज हरि भगवान विष्णु और शिव के गुण आते हैं, ऐसा ये सुभाषित कहता है। ये चार व्यक्तियों के गुण आते हैं बगैर कुछ पुण्य किए, ये कैसे होता है? तो यममेव कर धृत दंडम, यमराज के पास एक दंड होता है कि नहीं, शास्ता है यमराज जो है वो तो दंड है, तो उसी प्रकार से ये व्यक्ति जो है कर धृत दंडम वो भी दंड धारण करता है जैसे बुढ़ापा आता है वो। हरिमेव सगदम, हरि को सगद कहा है, सगद जो गदा जो है वो धारण करते हैं, गदा के साथ चलते, तो उसी प्रकार से गद शब्द का और एक अर्थ है रोग, तो जो सरोग पूरा रोग और व्याधि से भरा हुआ है ऐसा हरि की तरह सगत बन जाता है व्यक्ति जो है वो। शशांकम एव वक्रम, शशांक किसको कहते हैं, चंद्रमा को, तो चंद्रमा जो है उसकी तरह भी व्यक्ति हो जाता है, यम हरि चंद्रमा तीसरा है और चौथा शिव। तो शशांक, शश कहते हैं खरगोश को, तो खरगोश जिसके ऊपर खरगोश के जैसा चिन्ह है वो हो गया शश अंक, अंक हो गया चिन्ह मतलब चंद्रमा, चंद्रमा के ऊपर खरगोश का जैसे चिन्ह है राइट। तो इसलिए जैसे चंद्र वक्र होता है टेढ़ा, चंद्रकोर बोलते हैं ना क्रेसेंट मून, तो उसी प्रकार से व्यक्ति का भी शरीर सीधा होता है लेकिन कैसा हो जाता है फिर टेढ़ा हो जाता है इस प्रकार से। और चौथा है शिवमेव च विरूपाक्षम, शिव को विरूपाक्ष कहा गया, तो विरूपाक्ष मतलब क्या, शिव जी का बड़ा विशेष मुखमंडल है कि उसमें विषम संख्या में अक्ष है, दो ही आंखें होती है हर एक को, शिव जी की कितनी है तीन है, तो विषम संख्या में जिनके अक्ष है वो है विरूपाक्ष, लेकिन तो भी शिव जी विरूपाक्ष होके भी बड़े सुंदर है, विरूपाक्ष इतने सुंदर है कि ऐसे कहा है कि विरूपाक्षस्य जयिनी स्तुवे वामलोचना, जिनके बड़े बड़े सुंदर आंखें है वो भी विरूपाक्ष का मुखमंडल जो है उनका गुणगान करते हैं ऐसे विरूपाक्ष। लेकिन विरूपाक्ष का दूसरा अर्थ है जिसका बड़ा भद्दा आंख है, जिसकी बड़ी भद्दी आंखें हुई है, वी वी विगत विरूपाक्ष इस प्रकार। तो ऐसे व्यक्ति का हल हो जाता है जरा में, हम लोग देखते हैं कि आंखें वगैरह उसके नीचे झुर्रियां आ जाती है, आंखें छोटी हो जाती है और एकदम व्यक्ति जो है बड़ा भद्दा दिखने लगता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से यम की तरह हरि की तरह चंद्र और शिव की तरह जरा करोति अकृत पुण्यम अपि, जरा इस प्रकार से बना देती है अकृत पुण्यम अपि बगैर किसी पुण्य के, अगर पुण्य करते थे तो ऐसे गुण आते थे तो मानते हैं, लेकिन यहाँ पे बगैर किसी पुण्य को हरेक को ये जो है गुण प्रदान किया जाता है इस प्रकार से। ये एक्चुअली जो जरा है या काल है उसका स्वभाव ही है ये। सर्व निराकृति कहा है काल को, निराकृति लिटरली भागवत कहते हैं सर्व निराकृति, मतलब क्या, लिटरली हरेक को आकृतिहीन बना देता है, शेप बिगाड़ देता है, लिटरली देखा जाए तो पूरा फॉर्म जो है रूप खत्म कर देता है, ऐसा काल जो है वो इस प्रकार से। तो इससे यही है कि शून्य जो मानव है वो इससे शिक्षा ग्रहण करे और जाने कि कैसे मैंने आध्यात्मिक जीवन में गंभीर बनना चाहिए। ऐसे इतना पढ़ने के बाद भी, इतना सुनने के बाद भी हम लोग देखते हैं कि अगर लोग जो है इससे अपने जीवन की गंभीरता नहीं समझते हैं तो वो बड़ा व्यर्थ है। तो ये इस प्रकार के उपाख्यान से यही जीवन के अध्यात्म के प्रति, भक्ति के प्रति जो गंभीरता है वो दर्शाने के लिए यह चीज जो है वो बोली गई है। अभी दूसरे एक, यहां से दूसरे मुद्दे के ऊपर भी मैं बोलना चाहूंगा जो कि है ज्ञान और वैराग्य का जो उपदेश हुआ है पुरंजन उपाख्यान के अंतर्गत। श्रीजीव गोस्वामी बताते हैं कि कैसे ज्ञान जो है, ज्ञान मिश्रा भक्ति, ये जो है इसका पुरंजन उपाख्यान में उहापोह हो रहा है और उसके अंतर्गत ज्ञान और वैराग्य बड़े प्रधानता से बोले गए हैं। तो ज्ञान और वैराग्य जो है वो बड़ी प्रधानता से बोला गया है इस पुरंजन उपाख्यान के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। तो कभी कभी ज्ञान और वैराग्य की बात करते हैं तो भक्ति में भी हम लोग देखते हैं थोड़ा नकारात्मक दृष्टिकोण होता है ज्ञान की तरफ या वैराग्य की तरफ, है कि नहीं? कोई थोड़ा ज्यादा पढ़ने लगता है तो तुरंत बोल देते हैं ज्ञानी मत बनो, ये हमारा भक्ति का मार्ग है, ये ज्ञान का मार्ग नहीं है, ज्ञानी मत बनो। या फिर थोड़ा कोई और तपस्या करता है, थोड़ा निर्जल एकादशी कर रहा है तो तपस्या मत करो, ये तपस्वी का हमारा मार्ग नहीं है, ये जो भक्ति का मार्ग है उसमें ज्ञान और वैराग्य नहीं है करके ऐसे। तो क्या है एग्जैक्टली भक्ति, क्या ज्ञान और वैराग्य से विहीन है, कि भक्ति में ज्ञान वैराग्य जो है उसकी क्या परिभाषा है? तो भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी साधन भक्ति लहरी में इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं, कहते हैं ज्ञान वैराग्य यो हो भक्ति प्रवेशाय उपयोगिता ईषत प्रथमम एवेति नांगत्वम उचितम तयो हो, कहा है ज्ञान और वैराग्य को भक्ति में प्रवेश करने के लिए बड़ा उपयोगी माना गया है। भक्ति में एंट्री कराने के लिए ज्ञान और वैराग्य बड़ा उपयोगी है, लेकिन ईषत प्रथमम, थोड़ा सा चाहिए ज्ञान और वैराग्य, और पहले ही चाहिए प्रारंभ में ही, न अंगत्वम तयो हो उचितम, ये दोनों जो है भक्ति के अंग नहीं माने गए हैं। 64 अंग जो है भक्ति में उसमें ज्ञान और वैराग्य नहीं आता है अगर आप देखोगे तो। ऐसे तो ज्ञान और वैराग्य जो है इसकी खास करके उपयोगिता प्रारंभिक अवस्था में प्रवेश के लिए कही गई है, ईषत प्रथमम एव, थोड़ा सा चाहिए और प्रारंभिक अवस्था में चाहिए। तो थोड़ा सा चाहिए इसकी परिभाषा जीव गोस्वामी ने बड़ी डिटेल में की है, कहते हैं तीन प्रकार के ज्ञान है, आपने भी सुना होगा इसके बारे में, तत्पदार्थ ज्ञान, त्वम पदार्थ ज्ञान एवं ब्रह्म जीव ऐक्य ज्ञान। तो तत्पदार्थ ज्ञान कहते हैं ईश्वर ज्ञान को, त्वम पदार्थ ज्ञान कहते हैं जीव ज्ञान को, जीव के अपने स्वरूप के बारे में, और तीसरा है ब्रह्म और जीव का ऐक्य ज्ञान। तो जब ईषत थोड़ा सा ज्ञान चाहिए ये बात कही जा रही है तो इसका अर्थ है एक्चुअली कि ये ब्रह्म जीव ऐक्य ज्ञान जो है, जो निर्विशेषवादी बहुत उसके ऊपर चर्चा करते रहते हैं, बहुत उसके पीछे पड़े रहते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है। ब्रह्म जीव ऐक्य ज्ञान, ऐक्य विशेषम ज्ञानम निरस्तम, ऐसे कहे ऐक्य का जो ज्ञान है उसको निरस्त कर दिया है। और उसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञानोपयोगी वैराग्य जो है, ऐसे निर्विशेष ज्ञान का जो वैराग्य है उसको निरस्त कहा है। भक्ति में ज्ञान और वैराग्य को समूचे रूप से निरस्त नहीं कहा गया, लेकिन ऐसा ज्ञान जो कि ऐक्य विशेष है, ऐक्य के बारे में चर्चा कर रहा है इस प्रकार से। क्यों, क्या समस्या है ऐसे ज्ञान से? तो बताते हैं यद उभे चित्त काठिन्य हेतु प्राय सताम मते सुकुमार स्वभाव इयम भक्तिस्तद हेतु हेतु रीरिता, कहा। तो क्योंकि ये दोनों भी है चित्त काठिन्य, बड़ा हृदय का जो है काठिन्य, कठिनता, हार्डनेस ऑफ हार्ट जो है वो इन दोनों के कारण हो जाता है, ज्ञान और वैराग्य कारण। लेकिन भक्ति स्वभाव से सुकुमार स्वभाव है, भक्ति में बड़ा सुकुमार हृदय चाहिए व्यक्ति का, तो इसलिए ये दो जो है प्रतिकूल के रूप में, प्रतिकूलता के कारण बन जाते हैं, तो इसलिए उनको ईषत कहा है, थोड़ा सा प्रथमम एव। ऐसे जैसे हम लोग देखते हैं कि ज्ञान में क्या है, अलग अलग वाद जो है, नानावाद निरसन, उनको एक वाद को तोड़ना है, दूसरे ओपिनियन मत को प्रस्थापित करना है, तो इसमें व्यक्ति जो है बड़ा तार्किक बन जाता है और उसके कारण व्यक्ति जो है उसके हृदय की खास करके हृदय का काठिन्य जो है वो उसमें परिणत हो जाता है। उसी प्रकार से वैराग्य बड़ा शरीर को दुख देने वाला मार्ग है कि नहीं। पंचाग्नि व्रत करते हैं, ऊपर सूर्य और आगे चार बाजू में चार अग्नि जो है दधकते हुए रखते हैं और उसमें बीच में बैठ के तपस्या करेगा, तो ऐसे पंचाग्नि व्रत हुए, या एकदम कड़क कड़ा उपवास जो है वो करते हैं, तो इससे व्यक्ति जो है एक्चुअली चित्त काठिन्य कहा है हमारे आचार्य ने, बड़ा कठिन बन जाता है इसका हृदय जो है ऐसा व्यक्ति, तो इसलिए इसको डिस्करेज किया गया है ऐसे। तो ज्ञान और वैराग्य, फिर उसकी इसमें तीन प्रकार के ज्ञान तो हमने देखे, लेकिन फिर भक्ति के अंतर्गत ज्ञान और वैराग्य का क्या स्कोप है? क्या व्यर्थ है पूरा ज्ञान वैराग्य? ज्ञान भक्ति में इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है? अगर ज्ञान और वैराग्य इतना प्रतिकूल होता और बिल्कुल भी इसकी जरूरत नहीं होती, तो पहले तो भक्ति रसामृत सिंधु जैसा महाकाय ग्रंथ लिखने की क्या जरूरत है? भक्ति रसामृत सिंधु में इतना आकलन हो रहा है, इतनी चर्चा हो रही है, इतना विश्लेषण हो रहा है, तो ये भी तो एक प्रकार का ज्ञान ही है, और उसके अंतर्गत वो इतना कुछ बता रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी है और जीव गोस्वामी वगैरह वो टीका में इसके प्रकार से। गोस्वामी ने हमने गोस्वामी जो है हमारे, उन्होंने हमने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने कितने सारे ग्रंथ लिखे हैं भक्ति तत्व का निरूपण करते हुए, उस कालावधि में इनफैक्ट कि जहां पे पेपर जो है ऐसे ही अवेलेबल नहीं था, पेपर कागज खुद बनाना पड़ता था, स्याही भी खुद बनानी पड़ती थी, ऐसी स्थिति में पेपर बना बना के और स्याही बना बना के हमारे आचार्यों ने ग्रंथ लिखे है, तो किसके लिए लिखे है? एक्चुअली हमारे लिए लिखे वो जो है, तो हम उसको पढ़े, हम उसको जाने और भक्ति के तत्व को समझे, इसके लिए लिखा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो यहां तक कि जो व्याकरण है संस्कृत व्याकरण का, उसको भी भगवान के गुणगान में परिवर्तित कर दिया है कि नहीं। हरि नामामृत व्याकरण, पूरे व्याकरण के नियमों को पूरे हरि नाम में परिवर्तित कर दिया। तो कहने का मुद्दा क्या है, अनुकूल ज्ञान है भक्ति में कुछ, और कुछ प्रतिकूल ज्ञान है। तो ये जो हमने ब्रह्म जीव ऐक्य ज्ञान कहा, निर्विशेष ज्ञान कहा, वो प्रतिकूल ज्ञान है, लेकिन भक्ति में भजनीय तत्व संबंधी ज्ञान, श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं ये तो बड़ा अनुकूल है, ये तो बहुत जरूरी है, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। ईश्वर ज्ञान और जीव के अपने स्वरूप का ज्ञान बहुत जरूरी है भक्ति में, अनिवार्य है, वो तो कहती है भजनीय तत्व संबंधी ज्ञान, इसको निश्चित रूप से जो है वो करना चाहिए। और उसी प्रकार से भक्ति में प्रेरणा, भक्ति के कृष्ण स्मरण बढ़ाने के लिए जो वैराग्य है, जैसे एकादशी आदि व्रत हो या उपवास आदि हो जो कि विहित है भक्ति में, वो भी वैराग्य बहुत अच्छा है भक्ति के लिए। तो जो भक्ति पोषक है ऐसा ज्ञान और वैराग्य निश्चित रूप से भक्ति में जो है बड़ा जरूरी है। इनफैक्ट तीन अधिकारियों का जब विश्लेषण करते हैं शिलजीव गोस्वामी, मध्यमाधिकारी, उत्तम अधिकारी एवं कनिष्ठ अधिकारी, तो उसमें लिखते हैं कि शास्त्रार्थ विश्वास एवं श्रद्धा, श्रद्धा शब्द की परिभाषा कहते हैं कि शास्त्र के अर्थ में विश्वास, इसको ही श्रद्धा कहते हैं ऐसे। तो पहले तो उसको शास्त्र का अर्थ पता होना चाहिए है कि नहीं, किसमें विश्वास करेगा, नहीं तो बस विश्वास है लेकिन किसमें विश्वास, तो शास्त्रार्थ विश्वास एवं श्रद्धा इस प्रकार से परिभाषा करते हैं, तो ये श्रद्धा हुई ऐसे। तो ये अनुकूल वैराग्य या अनुकूल ज्ञान है भक्ति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, और ऐसा जितना ज्ञान हम जो ग्रहण करेंगे उतना भक्ति में ज्यादा प्रेरणा मिलेगी, ऐसी भक्ति जो है वो और अधिक इसमें वृद्धि जो है होगी। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद एक तात्पर्य में बड़ी सुंदर चीज लिखते हैं, कहते हैं कि हालांकि एक भक्त को तत्वतः भगवान का ज्ञान होता है, समर्पक रूप से पूरे तरह से भगवान का ज्ञान होता है, क्योंकि भगवान अनंत है इसलिए भगवान के बारे में ज्ञान भी अनंत है, तो इसलिए एक भक्त हमेशा ही ही कीप्स ऑन रिफ्रेशिंग हिज नॉलेज, ऐसे श्रील प्रभुपाद लिखते कि वो जो है इतना भगवान के बारे में, उनका नाम रूप गुण लीला आदि के बारे में इतना ज्ञान है, वो जो है उसके बारे में अपने को स्वयं को हमेशा रिफ्रेश करता रहता है, ये ज्ञान अर्जित करता रहता है भगवान के नाम रूप गुण लीला के बारे में, ये पॉजिटिव ज्ञान की बात हो रही, ठीक है। इस प्रकार से तो ज्ञान पे फुल स्टॉप नहीं लगा देना चाहिए, कभी कभी हम लोगों को लगता है कि बस इतना ही है और इसमें ही तत्व बोला है फिनिश और कुछ नहीं, तो ऐसा सिद्धांत नहीं है हमारा। एक्चुअली आचार्य कहते कि भगवान अनंत है और भगवान का प्रामाणिक परंपरा में संप्रदाय में जो गुणगान है वो भी अनंत है, तो इसीलिए ये अनंत गुणगान जो है अनंत काल के लिए चलता रहेगा, देयर इज नो फुल स्टॉप टू कृष्ण कथा। इस प्रकार से तो इसीलिए बड़ा अच्छा है कि इसमें जो भी हमारी हमारी जितनी भी क्षमता है उसके अनुसार ये भक्तिमय ज्ञान जो है उसको ग्रहण करे। श्रील जीव को रूप विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भगवत रूप गुण माधुर्य अनुभव माय ज्ञान, वो कहते हैं भगवान के रूप माधुर्य गुण का अनुभव करा देना वाला, करा देने वाला ज्ञान जो है, ऐसे इस ज्ञान को तो निश्चित रूप से इसकी सराहना की गई है, निश्चित रूप से ये जो है रिकमेंडेड है। अर्थात भक्ति में भी कोई अगर इस ज्ञान को लेके उस ज्ञान के पीछे ही पड़ा है, और कृष्ण स्मरण बेसिकली इस ज्ञान का और वैराग्य का उद्देश्य है कि कृष्ण का स्मरण और प्रकर्षता से होवे, लेकिन कृष्ण स्मरण को बाजू में रख के केवल ज्ञान के लिए उसको अर्जित करना चाहता है, या वैराग्य केवल दिखाने के लिए वैराग्य का अनुगमन कर रहा है, इस प्रकार से भक्ति के अंतर्गत भी क्यों ना हो, तो वो भी थोड़ी ज्ञान या वैराग्य जो कि शुष्क ज्ञान या शुष्क वैराग्य वाली ही मानसिकता हुई। तो भक्ति में जो ज्ञान वैराग्य है उससे तो हमारा पर्पज एक ही है कि कृष्ण स्मरण जो है और प्रकर्षता से होवे, नहीं तो फिर ऐसा ज्ञान और वैराग्य जो है वो भी बड़ा परिश्रम हो जाता है। आमनाया भ्यसनम अरण्य रुदितम, ये जो है हमारे मुकुंदमाला स्तोत्र में कवि कुलशेखर कहते हैं आमनाया भ्यसनानी सुश्रीराधा वृंदावन चंद्र की, आमनाय अभ्यसनानी अरण्य रुदितम वेद व्रतान्यन्वहम मेदश्चेद, ऐसे कह देते हैं। तो आमना यानी वैदिक शास्त्रों का पठन भी, जैसे कभी हमारे भी अगर भगवान का स्मरण नहीं करते हैं तो हमारा पठन भी अरण्य रुदितम हो जाएगा, क्राइंग अलोन इन द विल्डरनेस। तो हालांकि शास्त्र पढ़ रहा है बहुत, लेकिन उसको हृदय में तुष्टि नहीं अनुभव होगी। जो कृष्ण स्मरण है, जो कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न होना है, वो नहीं होगा अगर उसमें भक्ति जो है वो मूल उद्देश्य नहीं है। तो अरण्य रुदितम, जैसे अरण्य में कोई रोता बैठता है तो उसको कौन सुनने वाला है, तो उस प्रकार से ये जो है अरण्य रुदितम बनेगा। और वेद व्रतानी अन्वहम, वेद व्रत बहुत सारा वैराग्य, बहुत सारा उपवास आदि करना, वो कहते हैं मेदश्छेद, फैट रिमूवल प्रोग्राम, मेदश्छेद मेद का छेद हो जाएगा, बस शरीर के मेद का छेद हो जाएगा, लेकिन उसमें से कृष्ण भावना की प्रकर्षता जो है वो नहीं उत्पन्न होगी। ऐसे तो भक्ति के अंतर्गत भी ये चीजें अगर कोई कर भी रहा है तो उसका उद्देश्य एकदम क्लियर होना चाहिए कि इसमें कृष्ण भावनामृत जो है वो बढ़ाने के लिए ये जो है ज्ञान और वैराग्य बताया गया है। इस प्रकार से अर्थात भक्ति अपने में स्वतंत्र है। हम लोग ये भी सुनते हैं कि कैसे वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम्। तो भक्ति जो है अपने से ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न कर लेती है, इस प्रकार से है कि नहीं। लेकिन दूसरी ओर वही सेक्शन में भागवत कह रहा है तत्श्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतग्रहीतया। तो एक और भक्ति ज्ञान और वैराग्य प्रोड्यूस करती है, दूसरी ओर कहा है ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति जो है उसका अवलंबन कीजिए। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्रोड्यूस करती है कि ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति करनी, ऐसे है कि नहीं। अतो वै कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वंती आत्म प्रसादनिम। भक्ति को कवयो कवि लोग बुद्धिमान लोग कैसे परमया मुदा बड़े आनंद से भक्ति को करते हैं, लेकिन तुरंत कहा है कुर्वंती आत्म प्रसादनिम। भक्ति जो है प्रसाद, भक्ति जो है सुख आनंद देती है। तो भक्ति को आनंद से सुख से करना है कि भक्ति आनंद देती है। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, ये एक इंस्ट्रक्शन है कि दो इंस्ट्रक्शन है अलग अलग। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, दो अलग इंस्ट्रक्शन है कि चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। इज इट अ कॉजल फेनोमेनन और इज इट अ पैरेलल फेनोमेनन, एक दूसरे में परिवर्तित हो रहा है कि दोनों साथ चलते हैं। तो एक्चुअली दोनों भी है, इसका संदर्भ में विश्लेषण आता है कि भक्ति पारिणामिक है, भक्ति में सुख जो है परिणाम के रूप में आता है, लेकिन भक्ति अभ्यास भी है। भक्ति जो है उसको सुख से करना चाहिए। सो चैंट हरे कृष्णा हमारी स्थिति में, और अगर आपको आनंद नहीं मिल रहा है तो बी हैप्पी, चैंट हरे कृष्णा बी हैप्पी, आएगा वो आगे धीरे 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 अभ्यास से। और अगर चैंट हरे कृष्णा और तुरंत आप खुश बन रहे तो बहुत अच्छा है, फिर तो पारिणामिक, इट्स अ नेचुरल फ्रूट, ठीक है। तो इस प्रकार से तो भक्ति अभ्यास भी है, जितने हम शुद्ध होंगे उतना हम लोग देखेंगे कि भक्ति का जो परिणाम है वो भी हमारे जीवन में दिखता जाएगा। तो कल्टीवेशन है, भक्ति इज अ कल्टीवेशन श्योरली, लेकिन इन टर्न भक्ति विल ऑल्सो प्रोड्यूस ज्ञान एंड वैराग्य, इस प्रकार से। तो ये भक्ति के अंतर्गत ज्ञान और वैराग्य का थोड़ा सा ऊहापोह जो है वो श्री भक्ति संदर्भ, भगवत संदर्भ एवं भक्ति साम सिंधु के ऊपर किया गया। तो इसलिए प्रभुपाद जी का जो प्रस्तुतिकरण है एक्चुअली कृष्ण कथा का, बड़ा अनोखा है। हमारे इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि प्रभुपाद जी तत्वों पे बहुत जोर दिए। प्रभुपाद जी जो है उन्होंने इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण, क्या भारत में बहुत सारे कथा करने वाले हैं, कथाकार बहुत सारे हैं, लीला बहुत सारे बताते रहते हैं वगैरह, लेकिन प्रभुपाद जी ने हमेशा तत्वों पे जोर दिया। प्रभुपाद ने लीला भी दी, प्रभुपाद ने दशम स्कंद का जो सारांश है वो कृष्ण किताब दिया, फिर 14वें अध्याय तक प्रभुपाद जी ने दशम स्कंद के तात्पर्य दिए, चैतन्य चरितामृत दिया, है कि नहीं। तो लीला तो दिया ही प्रभुपाद ने, लेकिन तत्व के ऊपर बड़ा जोर दिया, क्योंकि खास करके भारत में लीला 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 लोग बहुत सुनते। एक बार हरिगिरि प्रभु कलकत्ता में थे और कलकत्ता में उन्होंने रामकृष्ण मठ में एक किताब देखी, तो कृष्ण के दशम स्कंद की लीलाओं का बड़ा सारांश रूप में सुंदर एक किताब बना दी थी उन्होंने। और वो किताब ऐसे एकदम ऐसी जा रही थी, इतना फटाफट, इतना उसका सेल हो रहा था, इतना सेल हो रहा था। तो हरिगिरि प्रभु ने ये चीज देखी रामकृष्ण मठ में कि ये किताब कितनी फटाफट जा रही है, बहुत सेल हो रहा। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को पूछा पत्र लिख के कि प्रभुपाद जी क्यों ना हम इस प्रकार से करें कि कृष्ण किताब जो है उसमें से तात्पर्य या फिलॉसफी इतनी बोली है उसको निकाल दे, और जो कथा है उस कथा को शॉर्ट में बना के रोचक ढंग में प्रस्तुत करे। यहां पे मैं देख रहा हूं क्या सेल है इस बुक का ऐसे। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य जब ये पढ़ा तो प्रभुपाद जी ने पत्र लिखा उनको वापस, और उन्होंने कहा ये क्या बात कर रहे हो तुम, ये क्या तथाकथित सारांश या छोटा करने की बात कर रहे हो। प्रभुपाद ने कहा अवर आचार्यज हैव नेवर कंडेंस्ड भागवतम, दे हैव ओनली एक्सपेंडेड भागवतम। उन्होंने कहा ऐसे अवर आचार्यज हैव ओनली एक्सपेंडेड भागवतम, नो कंडेंसेशन। ये कंडेंसेशन की कहां से बात आ गई, कंडेंसिंग कहां से बात आ गई ऐसे। अर्थात बीबीटी के द्वारा नो क्या है श्रीमद भागवतम कंडेंस्ड और सीसी कंडेंस्ड आदि है सारा, लेकिन उसका पर्पज क्या है, देखिए उसका पर्पज यही है कि व्यक्ति फाइनली बड़े भागवतम में आए, है कि नहीं। श्रील प्रभुपाद जी के भागवतम में आए, आचार्यों के टीका जो है उसमें आए करके, अगर उसको लेके प्रभुपाद जी के भागवतम को ऑप्शन बना दिया जाए तो वो तो पर्पज डिफीट हो गया उसका फिर, है कि नहीं। तो थोड़ा सा कुछ ओवरव्यू के लिए बड़ा जरूरी है कि कुछ शॉर्ट में चीजें दी जाए करके, ताकि बर्ड्स आई व्यू कहते हैं हम, है कि नहीं, विहंगम यू नो दृश्य, तुरंत देख के उसको समझ जाए कहाँ पे क्या है वगैरह ऐसा। लेकिन इसका पर्पज तो ये है कि एक्चुअली मूल भागवत की ओर बढ़े, प्रभुपाद जी के तात्पर्यों की ओर बढ़े, आचार्यों के ग्रंथ की ओर बढ़े ऐसे। तो अटेंशन टू द डिटेल्स इज साइन ऑफ लव। तो यहाँ पे ये शास्त्र की केस में भी हम लोग जो है देखते इस प्रकार से ये जो छोटा या सारांश रूप में है वो सब्स्टिट्यूट नहीं बन जाना चाहिए जो भागवत है, मूल भागवत है उसके लिए इस प्रकार से। तो ये प्रभुपाद जी ने हमें दिया है, बड़ा सुंदर प्रस्तुतिकरण है एक्चुअली प्रभुपाद जी का पूरे तत्व और यू नो रस इन दोनों का इस प्रकार से उहापोह करते करते हुए, और ये जरूरी है। तो इस प्रकार से ये ज्ञान बड़ा जरूरी है, और इस ज्ञान के साथ ही फिर हम कृष्ण की लीला को वास्तविक रूप से जो है समझ जाते हैं ऐसे। लेकिन अभी अंत करूंगा इससे, लेकिन व्रज की जब बात होती है तो व्रज के बारे में तो सिचुएशन या इक्वेशन बदल जाते हैं पूरे। अज्ञानमेव ज्ञानम व्रज के बारे में बताया है, यहां पे तो अज्ञान ही ज्ञान है एक्चुअली। कृष्ण के तत्वतः जानने के ऊपर हमने इतनी चर्चा की, लेकिन जब व्रज की बात आते हैं तो व्रज में कृष्ण को तत्वतः न जानना ये वास्तविक ज्ञान है। जानंत एव जानंतु किम बहुक्त्या नमे प्रभो, व्हाट्स द नेक्स्ट लाइन, मनसो मनसो वचसो वाचो वैभवम तव गोचर, ये ब्रह्मा जी कहते हैं। तो जानंत एव जानंतु, कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो भगवान को जानता हूं, तत्वतः जानता हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं जानने वालों को जानने दीजिए, जहां तक मेरी बात है मैं नहीं जानता, क्योंकि हे भगवान आपका वैभव जो है मनसो वचसो वाचो, ये आपका वैभव गोचर नहीं है मेरे लिए, मैं नहीं समझ सकता हूं इस प्रकार से। तो जब बात आती है व्रजवासियों की तो वहां पे तो भगवत्ता जो है वो छिप जाती है। ऐसे नहीं कि व्रजवासियों में अज्ञान है कृष्ण की भगवत्ता, पूरी तरह से ज्ञान है, पूरी पूरी तरह से ज्ञान है, लेकिन वो इतना गाढ़ा प्रेम है कि उस प्रेम में भगवत्ता छिप गई है। ऐसे जैसे कोई बहुत जम गया घी, और उसके अंतर्गत मानिए कुछ सोना डाल दिया हो आपने, तो घी अगर जम जाए तो सोना थोड़ी ना दिखने वाला है। उस प्रकार से ये भगवत्ता का सोना जो है वो छिप गया है पूरी तरह से, ये इतना प्रेम जो है प्रगाढ़ है ऐसे। तो इसलिए ऐसे यशोदा माई जो है वो भगवान के लिए बड़ी चिंतातुर रहती है, अगर भगवान है तो भगवान को क्या किसी चीज से भय हो सकता है। लेकिन शास्त्र कहता है अनिष्टा शंकिनी बंधुर दयानी, जो बंधु होते हैं ना, जो प्रेमी होते हैं, उनका हृदय तो हमेशा अनिष्टा शंकिनी, अनिष्ट सोचता है कि अरे मेरे प्रेमी जो है, मेरे बिलवेड ऑब्जेक्ट जो है, मेरे प्रिय वस्तु है, उसको कुछ अनिष्ट हो जाएगा, ऐसा वो प्रेम का स्वभाव है, अनिष्टा शंकिनी बंधुर दयानी ऐसे। तो इसलिए भागवत बताता है कि कैसे यशोदा और रोहिणी भी कृष्ण के लिए इतनी चिंतातुर रहती थी, खास करके कृष्ण और बलराम जब रिंगन लीला करने लगे, रेंगने लगे भगवान कृष्ण और बलराम जी जब, तो यहां वहां इतना दौड़ के उत्पात मचाने लगे, तो यशोदा माई इतनी उनसे चिंतित थी, इतनी उनके पीछे कि कुछ घर का एक काम भी नहीं कर पाती थी। वैसे ही रोहिणी की स्थिति थी। एक श्लोक बड़ा सुंदर है, उसमें बताया है कि कैसे श्रृंगी, यानी जब बड़े बड़े सिंग वाले गाय हो या बैल हो, इसको कृष्ण बलराम देखते थे, अभी अभी रेंगना प्रारंभ किया, तो बड़े इतने शरारती थे, इतना भयंकर उत्पात करते थे, तो बराबर सबसे बड़ा जो बैल है उसके सामने कृष्ण बलराम जाके नाचेंगे उसके सामने, एकदम उसको कुछ दिखाएंगे वगैरह। अरे इतना खूंखार बैल है वो सिंह वाला, उसके सामने जाके क्यों नाच रहे, दूर नाच नहीं, लेकिन यही तो शरारत, एकदम वहां उसके जाके सामने जाके नाचेंगे। फिर अग्नि, जहां कुछ अग्नि दिख गया तो दौड़ के लोग अग्नि, ये दोनों अग्नि को पकड़ना चाहते थे, तो माताओं को हमेशा टेंशन, कुछ ये चूल्हे में हाथ डालेगा करके, वो अग्नि जो है उसको ग्रहण करना चाहते थे। या फिर दमश्री, यानी पैने दांत वाले जानवर, जैसे कुत्ते थे या फिर वानर थे या फिर बिल्लियां थी, तो ये लोग जाते थे और उनसे ही जाके कुछ उनके साथ खेल खेलेंगे, एकदम उसको जाके कुछ उसको गाल पे एक झापड़ लगा देंगे वगैरह से, और अच्छा पहने दांत है क्या, बहुत दिन इस प्रकार से देखेंगे, तो हमेशा वो काट ना ले ऐसा डर रहता था यशोदा माई वगैरह को। फिर असी कहा है, असी यानी तलवार, नंद बाबा आदि के पास भी तलवार वगैरह होती थी कुछ रक्षार्थम वगैरह इस प्रकार से, तो ये लोग जब नंद बाबा वगैरह बाहर गए तो वो कबर्ड जो है उसको खोल के तलवार लेके आते थे एकदम, और ऐसे पूरे तलवार घुमाते हुए एकदम दोनों जो है वो रेंगते हुए तलवार घुमाते थे, अभी इतनी शक्ति देखो कैसी शक्ति भी है तलवार जो है ऐसे, तो ऐसे घुमाते घुमाते यशोदा को लगता था खुद को ही ना काट दे, खुद को नहीं लग जाए, तो इसलिए बड़ी चिंतित रहती थी, दोनों दौड़ती रहती थी इन दोनों के पीछे, शरारतों से उनको दूर लेके जाना चाहती थी। जल पानी जो है, जहां पे भी पानी दिख जाए कुछ, जैसे पानी का कुछ स्टोरेज है वहां पे जाके पानी में जंप लगा देते थे और बोलते थे बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसे इस प्रकार से कृष्ण बलराम जो है वो ऐसे, तुमको किसने पानी में जाने के लिए कहा था, खुद ही जंप कर दिया पानी में, लेकिन जाके फिर बचाओ बचाओ बोल के फिर माता का ध्यान आकृष्ट कर देते। उसी प्रकार से द्विज, द्विज यानी पंछी, जैसे बगुला आदि पंछी है या बड़े बड़े अन्य भी मोर आदि पंछी जो है, उन पंछियों के पास जाके उनकी जो पूंछ है उसको खींचेंगे एकदम, और तो पंछी वो आगे दौड़ने का प्रयास करेंगे तो और पकड़ेंगे उसको इस प्रकार से। और अंतिम कहा है कंटक, तो कंटक जो है पूरे सर्वत्र व्रज में, तो वो तो गोष्ठी है कि नहीं, इट्स अ काउ पैस्चरिंग ग्राउंड, तो गोष्ठी में तो यहाँ वहां कंटक सब जो है फैले रहते हैं, और कृष्ण बलराम जो है वो तो दोनों पूरे नंगे पैर जो है यहाँ वहां रेंगते रहते थे, दौड़ते रहते थे, तो हमेशा कोई कंटक जो है उस वो उनको घुस ना जाए, उनको लग ना जाए, ये चिंता हमेशा यशोदा माई को रहती थी ऐसे। तो क्या ये यशोदा और रोहिणी जानते नहीं है कि भगवान जो है भगवान है, उनको क्या है ये कंटक वगैरह या ये सिंह, ये अरिष्टासुर जैसे इसको मार देंगे आगे, तो ये श्रृंगी क्या है वगैरह नहीं, लेकिन यही है ये ज्ञान के स्टेज के परे ये भक्ति की प्रकर्षिता हो गई पूरी पूरी तरह से, उसमें भगवत्ता का जो है पूरा पूरा मानो लगता है जैसे अज्ञान है ज्ञान पूरा पूरा लेकिन मानो अज्ञान है। तो यही वास्तविक एक्चुअली जीवन का हमारे भी लक्ष्य है, भगवान के प्रति हमारा पूरा अज्ञान रहता है, इस अज्ञान से भक्तिमय ज्ञान के द्वारा फिर से अज्ञान में जाना है, यह जो है एक्चुअली भक्ति का वास्तविक उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।